मेरे अजीज दोस्तों नमस्कार। AFEIS के आज 7 अक्टूबर 2020 के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं और आप सबके साथ ही विशेष रूप से स्वागत करता हूं अपने उन एक नौजवान साथी मोहित मिश्रा का जिनका गांव है बेवर उत्तर प्रदेश से हैं, जिन्होंने एकेडमी की 7 से 21 मार्च के बीच होने वाली क्लासेस के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। फ्रेंड्स, आज मुख्य विषय के तहत मैं आपसे क्वाड के बारे में कुछ बातें करूंगा, लेकिन आइए पहले कुछ दूसरी घटनाओं को देख लेते हैं। और दूसरी घटनाओं की जो संख्या है आज वो थोड़ी सी ज्यादा ही है, तो देखते हैं क्वाड के बारे में कितनी बातें हो सकेंगी। पहली बात तो यह है कि आज के अखबारों में आपने पढ़ा भी होगा कि जो हमारी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, जिसे हम MPC के नाम से जानते हैं, आपको ध्यान होगा कुछ दिनों पहले मैंने आपसे चर्चा की थी कि इस कमेटी की जो बैठक होनी थी वो स्थगित कर दी गई है। और सिर्फ इसलिए स्थगित करनी पड़ी क्योंकि उसमें जो 3 मेंबर्स अलग से अपॉइंट किए जाते हैं उनकी नियुक्ति नहीं हो सकी थी, जबकि मौद्रिक नीति अपने आप में इतना ज्यादा मायने रखती है और खासकर इस इकोनॉमिक क्राइसिस के दौर में। तो दोस्तों, वो तीनों नियुक्तियां अब कर दी गई हैं। मैं बस थोड़ा सा आपको नाम बता रहा हूं, एग्जामिनेशन की दृष्टि से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन चूंकि आपको मालूम है कि नियुक्तियां नहीं हुई थी तो मालूम होना चाहिए कि नियुक्तियां हो गई हैं। एक जयंत वर्मा जी हैं जो IIM अहमदाबाद में प्रोफेसर हैं, दूसरी आशिमा गोयल हैं जो प्रधानमंत्री के हमारी जो आर्थिक सलाहकार परिषद है उसकी सदस्य हैं, और तीसरे मेंबर हैं शशांक भिड़े जो सीनियर एडवाइजर हैं नेशनल काउंसिल फॉर अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च के। तो अब निश्चित है कि बहुत जल्दी ही MPC की बैठक होगी। आपने अखबारों में यह भी पढ़ा होगा कि 3 वैज्ञानिकों को बकायदे फिजिक्स के नोबल प्राइज के लिए घोषणा कर दी गई है। इन 3 वैज्ञानिकों के नाम हैं, बस आप ध्यान से सुन भर लीजिएगा, है ना, रटने की जरूरत नहीं है। एक हैं रेनहार्ड जेंजेल, देखिए उच्चारण में हो सकता है कि थोड़ी बहुत गलती हो जाए क्योंकि एग्जैक्ट उच्चारण करना थोड़ा मुश्किल होता है, जानते हैं आप रोमन लिपि को सीधे सीधे उच्चारित नहीं किया जा सकता। दूसरे हैं रोजर पेनरोस और तीसरी महिला वैज्ञानिक हैं एंड्रिया गेज। मैं रिपीट कर रहा हूं नाम, रेनहार्ड जेंजेल, रोजर पेनरोस और एंड्रिया गेज। 2 बातें खासकर मैं यहां ऐड करना चाहूंगा। पहला तो यह है कि जो ये फिजिक्स का नोबेल प्राइज दिया गया है, ये ब्लैक होल जो कृष्ण विवर के नाम से भी हिंदी की किताबों में आपको पढ़ने को मिलेगा, उसके बारे में जानकारी देने के लिए ये दिया गया है, ब्लैक होल, ब्लैक विवर। दोस्तों, कहा जाता है कि इस ब्रह्मांड में ब्लैक होल हैं और उसमें इतनी ज्यादा ताकत होती है कि उसके आसपास या बहुत दूर से भी कोई चीज उससे बच करके नहीं जा सकती और उसमें समा जाती है। तो बेसिकली आइंस्टीन का जो सापेक्षता का सिद्धांत है, इन वैज्ञानिकों ने कहा है, उसमें से जो एक वैज्ञानिक है रोजर पेनरोस, की जो आइंस्टीन का जो सापेक्षता का जो सामान्य सिद्धांत है वही बेसिकली ब्लैक होल के बनने का कारण है। हालांकि आइंस्टीन खुद इस बारे में बहुत ज्यादा श्योर नहीं थे, सुनिश्चित नहीं थे कि ब्लैक होल का अस्तित्व है या नहीं। तो पहली बात तो ये। जो दूसरी बात है वो ये है कि जो एंड्रिया गेज है वो 4थी ऐसी महिला हैं जिन्हें फिजिक्स का नोबल पुरस्कार मिला है, फिजिक्स का नोबल पुरस्कार 4थी ऐसी महिला हैं। कभी कभी इस तरह के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, इसीलिए खासकर मैंने यह बात आपको बताई है। फ्रेंड्स, तीसरी खबर, एक अच्छी खबर जो सिविल सर्विस के लिए तो इम्पॉर्टेंट नहीं है लेकिन शायद आपके मनोविज्ञान के लिए इम्पॉर्टेंट हो, और वो ये है कि अब जो भारत में आप देखिए कि जो सक्रिय मरीजों की संख्या है वो लगातार कम होती चली जा रही है, 14वें दिन भी वो 0 से नीचे रही है, और चूंकि 14 दिन लगातार 0 से नीचे रही है संक्रमित सक्रिय मरीजों की, तो इसे WHO की परिभाषा के तहत अब पीक माना जाएगा कि जो पीक होना था, जो उच्चतम स्थिति होनी थी महामारी की, कोरोना की, वो आ चुकी है। अब यहां से वो धीरे धीरे गिरना शुरू होगा, लेकिन इसके साथ ही साथ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बकायदे ये वार्न भी किया है कि बहुत ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि यूरोप में जहां बहुत पहले पीक आ चुका था, 3 महीने के बाद इसकी सेकेंड वेव आ गई, दूसरी लहर आ गई। लेकिन एक अच्छी बात इसी के साथ ये रही कि जो दूसरी लहर आई है उसमें संक्रमितों की संख्या तो बढ़ रही है, पहली लहर की तुलना में भी ज्यादा है, लेकिन जो मृत्यु दर है वो बहुत ज्यादा कम है। इसका मतलब है कि हम लोगों ने इसे नियंत्रित करने के तौर तरीकों को समझ लिया है और इसके इलाज के बारे में भी अब काफ़ी कुछ जानकारियाँ मिल गई हैं। तो बस ये थोड़ी सी जानकारी आपके मनोवैज्ञानिक रूप से मजबूत होने के लिए। फ्रेंड्स, आज के दैनिक भास्कर में एक एडिटोरियल कमेंट है, वो है निंदा को देशद्रोह बनाना बंद हो, राइट। अभी आपको मालूम होगा कि कुछ जैसे उत्तर प्रदेश में अभी जो घटनाएं हुई हैं, बहुत ही दुर्भाग्यजनक घटना घटित हुई है, जो खासकर रेप केसेस से संबंधित हैं, उसके तहत कुछ लोगों के खिलाफ देशद्रोह का मामला भी दर्ज किया गया है। तो उसी को बेस बना करके एडिटोरियल कमेंट लिखा गया है और उसमें जो देशद्रोह को आधार बनाकर जिस तरीके से खासकर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बाधित करने की कोशिश की जाती है, उसके बारे में ये एडिटोरियल कमेंट है। इसे आप पढ़ लीजिएगा, इसके बारे में मैं दोहराने का कोई अर्थ नहीं है, लेकिन हमारी जो संवैधानिक स्थिति है उसकी तरफ मैं जरूर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, क्योंकि सामान्य तौर पर जब हम मूल अधिकार के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को पढ़ते हैं तो वो हमारे हाथ से जो बहुत ही महत्वपूर्ण बातें होती हैं वो छूट जाती हैं। इस एडिटोरियल कमेंट में आपको 19(2) मतलब अनुच्छेद 19 और इन ब्रैकेट 2 का उल्लेख मिलेगा। तो ये 19 ब्रैकेट 2 क्या है, केवल मैं ये बताना चाह रहा हूं। देखिए, जो हमारा जो अनुच्छेद 19 है वो स्वतंत्रता के अधिकार के तहत है और इसका शीर्षक वाक स्वतंत्रता आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण, मतलब अभिव्यक्ति की आजादी से संबंधित कुछ संरक्षण मूल अधिकार के तहत, प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच। तो जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है उसके तहत बकायदे वहां 5 बिंदु दिए हुए हैं कि किन किस क्षेत्रों में किस किस तरह की स्वतंत्रता आपको दी गई है, भारत के नागरिकों को दी गई है, वो आप पढ़ लीजिएगा, है ना, क्योंकि उनको भी मैं दोहराऊंगा तो फिर जो मैं मूल बात बताना चाह रहा हूं वो उसमें गायब हो जाएगा। अब मैं आता हूं 19 इन ब्रैकेट 2 कि इन ब्रैकेट 2 क्या है। दिमाग में रख लीजिए कि 19 अनुच्छेद 19 के ब्रैकेट 2 में बेसिकली उन स्थितियों का उल्लेख किया गया है कि कोई भी राज्य यानी कि सरकार किन किन आधारों पर इस वाक स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा सकती है, रोक लगा सकती है। तो उसके तहत उन्होंने कुछ बिंदु दिए हुए हैं जिसमें यह है कि भारत की एकता और संप्रभुता पर अगर खतरा आ रहा है तो प्रतिबंधित किया जा सकता है, राज्य की सुरक्षा को लेकर के प्रतिबंधित किया जा सकता है, अगर हमारे विदेशी राज्यों से मित्रवत संबंध हैं और कोई अभिव्यक्ति के माध्यम से इसे नस खराब करना चाह रहा है तो लगाया जा सकता है, सार्वजनिक आदेश। यहां जब आप किताब में पढ़ेंगे तो वो है सार्वजनिक आदेश, लेकिन यहां मैं इसे थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूंगा, वो अनुवाद ठीक नहीं है। लक्ष्मीकांत जी की किताब में भी सार्वजनिक आदेश शब्द है, बेसिकली वो सार्वजनिक आदेश न होकर के वो है लोक व्यवस्था, लोक व्यवस्था, और इंग्लिश में यह है पब्लिक ऑर्डर। दुर्भाग्य से उसका जो अनुवाद है जिसने भी किया होगा, लक्ष्मीकांत जी के ओरिजिनल किताब तो इंग्लिश में है, अनुवाद किया होगा तो पब्लिक ऑर्डर को, ऑर्डर को आदेश कह दिया है, बेसिकली ये कहते हैं ना लॉ एंड ऑर्डर, तो कानून और व्यवस्था है, तो ये है लोक व्यवस्था। और इस लोक व्यवस्था शब्द का ही प्रयोग इस दैनिक भास्कर के आपको एडिटोरियल कमेंट में मिलेगा, तो याद रखिए ये शब्द आप नोट कर लीजिए, लोक व्यवस्था। तो अब पब्लिक ऑर्डर, कानून और व्यवस्था की बात हो गई, अब कानून व्यवस्था की स्थिति के तहत तो आप बहुत सारी घटनाओं को, बातचीत को, अभिव्यक्ति के स्वतंत्रताओं को आप हासिल कर सकते हैं। तो इस एडिटोरियल कमेंट में यही लिखा है कि ये दुर्भाग्यजनक बात है कि ये शब्द कहां से मूल अधिकारों को प्रतिबंधित करने के अंतर्गत आ गया और इसी को लेकर के जो सरकारें हैं इसका गलत इस्तेमाल कर रही है, इसको आधार बना करके लिखा गया है। और चूंकि बहुत इंपॉर्टेंट एडिटोरियल कमेंट है तो प्लीज आप लोग इसे जरूर अच्छे से देखिएगा। मैं रिपीट करना चाहूंगा, अनुच्छेद 19 इन ब्रैकेट 2 में लोक व्यवस्था शब्द का प्रयोग किया गया है। जो भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, लक्ष्मीकांत जी की किताबें बहुत, ये किताब बहुत पॉपुलर है, वो किताबें पढ़ते भी हैं, तो उस जो पब्लिक ऑर्डर शब्द है बेहतर होगा कि उसे आप लोक व्यवस्था वहां शब्द कर लें। फ्रेंड्स, अब मैं आता हूं आज के मुख्य विषय पर और वो है क्वाड। ये जो क्वाड है ये बेसिकली क्या है, देखिए क्वाड का जो फुल फॉर्म है वो है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, हालांकि आप क्वाड से निकालेंगे तो उस तरह से नहीं निकलेगा। इनफैक्ट ये नाम अभी आया है, इस क्वाड का एक और भी दूसरा नाम है जिसे हम, लेकिन अभी जो पॉपुलर है ये आपको क्वाड के नाम से ही समझना चाहिए, क्वाड। इसमें चार देश हैं, आप बहुत अच्छे से इसे सुन लें, इसमें चार देश हैं, कौन कौन? अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया, राइट? आपको मैं सलाह देना चाहूंगा कि आप थोड़ी तकलीफ करें और एटलस उठाएं, नक्शा देखें और उसमें ये जो चारों देश हैं वहां वहां पर बिंदु लगाएं, है ना? जैसा कि मैंने कहा ना, इसका एक और नाम है तो QSD भी इसका नाम है, QSD, यहां S का मतलब सिक्योरिटी से, मैं अभी समय रहा तो आपको बताऊंगा। इन चारों देशों के जहां नाम है, जिस स्थान है, लोकेशन है, उन पे आप निशान लगा दें और फिर उनको आप लाइन खींच दें, चारों सबके सभी को एक दूसरे से मिला दें लाइन खींच के, तो आप देखेंगे कि आपको एक चतुर्भुज जैसी स्थिति बन जाएगी। खींच करके देखिए, अब कोई लाइन लंबी हो सकती है, कोई लाइन चौड़ी हो सकती है, लेकिन लगभग लगभग चतुर्भुज जैसी स्थिति बन जाएगी। तो ये चार देश हैं। फिर आप पाएंगे कि ये जो चारों देश हैं, देखिए कि उनकी लोकेशन कहाँ है। भारत तो आपको मालूम है कि हिंद महासागर से घिरा हुआ है, उसका हमारा जो दक्षिण पार्ट है वो तो हिंद महासागर से घिरा हुआ है, है ना? ऑस्ट्रेलिया आप देखेंगे कि उधर प्रशांत महासागर में है, अमेरिका का भी उधर प्रशांत महासागर आ जाता है और ऑस्ट्रेलिया भी वही है, आसपास है, मतलब मोटे तौर पर मैं आपको समझा रहा हूं। जापान भी आपको उधर उसी से आसपास मिलेगा। तो अब यहां दो महासागर हो गए आपके पास, हिंद महासागर और प्रशांत महासागर। और चाइना कहां है? चाइना भी पता लगेगा कि इसी, अगर बहुत व्यापक रूप में देखेंगे तो आपको प्रशांत महासागर हिंद महासागर के आसपास मिलेगा, छोटे रूप में तो चीन सागर भी है लेकिन वो एक छोटा सागर, हम महासागर की बात कर रहे हैं। तो अब आप देखें कि ये जो चार देश हैं, बेसिकली इसका जो दिमाग, जो आइडिया आया था वो जापान के प्रधानमंत्री को 2007 में आया था और 2007-08 में इसकी स्थापना भी कर दी गई थी, लेकिन जिस रूप में आज हम क्वाड को देख रहे हैं विधिवत तरीके से इसकी शुरुआत हुई है 2017 में, मतलब बहुत पुराना नहीं है। चार देश हैं। अब मैंने चीन के बारे में बात की, हिंद प्रशांत क्षेत्र के बारे में बात की और इनको लेकर के मैं काफी बातें करता रहता हूं, तो क्या आपके दिमाग में कोई ऐसा तथ्य आ रहा है कि इसका पर्पस क्या होगा, ये चारों देश क्या करते हैं? देखिए, इस विषय को मैंने चुना इसलिए है कि अभी इन चारों देशों की बैठक हुई है जापान में, चारों देशों की बैठक है, हमारे जो विदेश मंत्री हैं जयशंकर जी गए थे। अब आप देखिए कि सारी बैठकें वर्चुअल हो रही हैं लेकिन ये बैठक फेस टू फेस हुई है और इन चारों देशों ने मिलकर के कुछ बातें की हैं। अब वो क्या बातें की हैं आज अखबारों में दिया हुआ है। उन्होंने दो बातें सबसे इंपॉर्टेंट कही हैं कि जो हिंद प्रशांत का जो समुद्री क्षेत्र है इसे सभी दुनिया वालों के लिए, विश्व के जितने भी देश हैं, समान अवसर वाला क्षेत्र बनाया जाना चाहिए और इसके लिए हम काम करेंगे। और दूसरा ये है कि ये जो चार देश हैं आपस में मिलकर के जो वर्ल्ड सप्लाई चेन है उसकी स्थापना करेंगे। दो बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। तो अब जब वो कह रहे हैं कि सभी के लिए समान अवसर की स्थापना करनी है तो वो किसके खिलाफ, तो आपको साफ लगेगा कि नहीं, इस क्षेत्र में चीन जो अपना प्रभुत्व बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, आर्थिक और साम्राज्यवादी सैन्य प्रभुत्व दोनों जो बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, इसको नियंत्रित करने के लिए ये संगठन है। और इसीलिए दोस्तों ये जो संगठन है ये है इंटर गवर्नमेंटल सिक्योरिटी फोरम। याद रखिए, इंटर गवर्नमेंटल यानी कि कुछ सरकारें हैं इसमें, सिक्योरिटी फोरम तो इसका जो मेन पर्पज है वो सुरक्षा है और सुरक्षा के लिए फिर ये कुछ रणनीतियां बनाते हैं जिनमें अभी जो बातें हैं, तीन बातें हैं, सब तीन काम करते हैं, आपस में बैठकें करते हैं, इससे संबंधित जो इन्फॉर्मेशंस होती हैं उन इन्फॉर्मेशंस का आदान प्रदान करते हैं और साथ ही संयुक्त सैन्य अभ्यास भी किया जाता है। 1.5 महीने पहले मुझे ध्यान आ रहा है मैंने मालाबार अभ्यास के बारे में आपसे बात की थी, मालाबार अभ्यास, तो उसके तहत संयुक्त सैन्य अभ्यास भी किया जाता है। तो दोस्तों क्वाड के बारे में ये थोड़ी सी बातें मैंने बताई हैं। मुझे लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट संगठन है, इसके बारे में आपको जानना ही चाहिए। तो फ्रेंड्स, मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स आप सब देख लेंगे। ईमेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद देता हूं, और इन्हीं में से तीन दोस्तों के नाम हैं संतोष कुमार अंबुज सिंह आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से और विवेक कुमार कोडरमा झारखंड से। आप सबका बहुत बहुत आभार। और इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को अब यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।